ओम शांति। आज 5 अगस्त 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। जब हम समझेंगे अपने आप को देह और देह के संबंधियों की तरफ होगा आकर्षण और इन वस्तुओं की तरफ होगा आकर्षण, तो हम जाएंगे दुख धाम में। और यदि हमें जाना है शांति धाम, तो उसके लिए तो सभी को शांति धाम जाना है, चाहे वो अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करे तो भी शांति धाम जाएंगे, अपने आप को आत्मा न समझकर संसार के दुखों में रहें तो भी शांति धाम जाएंगे। अंत में हर एक को ये अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं। परंतु यदि आत्मा समझकर परमात्म डायरेक्शन पर चलकर हम इस संसार की नश्वर वस्तुओं से जितना अनासक्त होंगे, आकर्षण मुक्त होंगे, उतना सहज बिना सजा खाए हम शांति धाम में जाएंगे। परंतु सुख धाम में जाने के लिए परमात्म डायरेक्शन पर चलने के साथ साथ हमें अकर्म का खाता भी जरूर बनाना है। बिना अकर्म के खाते के सुख धाम में जा नहीं सकते। आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो मुक्ति धाम में जाएंगे। आत्मा समझ परमात्मा की याद के साथ साथ परमात्म डायरेक्शन पर चलकर जितना अकर्म का खाता बनाएंगे उतना ही सुख धाम में श्रेष्ठ पद पाने के अधिकारी बनेंगे। अब जज कर लो कि हमें किधर जाना है। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? कौन सा निश्चय हो जाए तो आप सदा खुश रहेंगे? उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने, किसने हमें चुना, किसने हमें अपना बनाया। बाप का बनने के लिए कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पहला निश्चय चाहिए कि परमात्मा पिता का बच्चा बनने के लिए कोई वेद शास्त्र आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। ये याद आएगा तो फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। एक तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करना हो गया। चक्र का मतलब क्या है? स्वदर्शन चक्र फिराना। अब तक हम पहले शुरू में आए तो हम ये समझते थे सुदर्शन चक्र फिराने का मतलब है चारों युगों को, पांचवें युग को याद करना, कि हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य बने, हम शूद्र बने और हम फिर अब शूद्र से परमात्म डायरेक्शन पर ब्राह्मण बन रहे हैं। परंतु अब बाबा ने समझाया ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र नहीं। संपूर्ण स्वदर्शन चक्र फिराना माना यहां ब्राह्मण बनते समय अपने आप को चेक करना कि मेरे में अभी कौन कौन सी कमियां हैं, उन एक एक कमी को निकालना। हर चक्र के बाद यदि हमने किसी बुराई का गला नहीं काटा तो हमारा चक्र फिराना बेकार। मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उनको चेक करना और उनका गला काटना, ये है सुदर्शन चक्र फिराना, ना कि पांचों युगों को याद करते रहे। पांचों युग हमें याद है तब हम अपने आप को स्मृति में रखे कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे वहां जाने से कौन रोक सकता है, उसका गला काट, ताकि वो हमारे जीवन में रोकने के लिए ना आ सके। जितना गला काटते जाएंगे उतना आपके जीवन में खुशी आती जाएगी, उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब हमें सफलता मिलती है तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है, सफलता नहीं मिलती तो उमंग उत्साह नहीं बढ़ता। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है कि हम किसके बने। जिस दिन पता चला कि हमें भगवान ने चुना है कितनी खुशी है, सबको खुशी होती है। किसने हमें अपना बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का। शरीर छोड़ करके भी फिर बाप का बनना होता है। अगर एक शरीर छोड़ेंगे तो फिर हम दूसरे बाप का बनेंगे, तीसरा शरीर छोड़ेंगे तीसरे का बनेंगे। शरीर छोड़ते जाएंगे हर जन्म में नया बाप मिलता जाएगा। यहां भी बाप का बनना है, यह बिना शरीर छोड़े बाप का बनना है, जिसे कहते हैं मर जीवा जन्म, जीते जी मरने वाला जन्म। पर तो इसके लिए कोई वेद शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का मालिक आ गया, संबंध की बात है। यहां भी बाबा कहा और बाप की जायदाद का मालिक बना। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं, परमानेंट बच्चे हैं। वो हमारा परमानेंट बाप है। ये शरीर का बाप तो टेम्परेरी है जो हर जन्म में बदलता रहता है। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमें शरीर मिलता है। हमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, और दुनिया में हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। बाप के बच्चे बने हो ये कहते हैं, मैं कोई गुरु गोसाई नहीं। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ये संबंध हुआ ना कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का कोई बाप है? मां बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हो तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख गने रे। आत्मा को जैसे वो अविनाशी याद है, हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम मात पिता के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। जब पता लगेगा कि हम किसके बच्चे हैं तो उसकी जायदाद का भी हमें पता लगेगा। तो वर्षा क्या मिलता है हमें? 7 गुण 8 शक्ति। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है बाप के बने हो तो उनको याद करो। याद करो अर्थात कहना मानो। याद करने का मतलब है परमात्मा की श्री मत पर चलना, और इसका कोई मतलब नहीं। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्योंकि जब मेरी श्री मत पर चलेंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। खाली शिव बाबा करने से कितनी सहज बात है, विशाल बुद्धि होनी चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझाते, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं, बाप को ही याद करते रहना है। ये भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। शूद्र बनने के बाद हमें फिर देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसके आदि मध्य अंत को जानने से तुम ऊंच से ऊंच बनते हो, क्योंकि यही एक समय है जब हमारी चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। तो स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र बनना है, और एक एक विकार का गला काटना है। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता, सदैव के लिए, क्योंकि हमारी हर सेकंड हर पल चढ़ती कला है, तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। जहां चढ़ती कला में, जहां जीवन में सुधार आना रुका तो खुशी भी रुक जाएगी। हर्षित मुख नहीं रह सकेंगे, हर्षित मुख तभी है जब सुधार आ रहा है। निरंतर याद की यात्रा पर है, निरंतर सुधार आ रहा है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो, फिर खुशी गायब हो जाती। क्या कारण है? मां बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं है। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है, कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान, हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं, भाव तुम तंदुरुस्त ना भी हो, कितने बीमार भी हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। ये जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो, चाहे मरने की हालत पर हो तो भी आप औरों को नॉलेज दे सकते हो। कैसे देंगे? अपनी वृत्ति से, अपने व्यवहार से, अपने कृति से। क्योंकि बहुत समय से अपना व्यवहार ऐसा बनाया हुआ होगा तो उस समय भी आप अपने व्यवहार से भी सेवा कर सकेंगे। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय में भी किसी को ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में पड़े रहें और मुख बंद हो जाए। मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। जिसको प्रैक्टिकल हमारे बाबा ने दादियों ने दिखाया कि अंत समय तक कैसे उन्होंने कितना भी बीमार होते हुए सेवा की। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है। इसलिए शिव बाबा को याद करो, इसलिए शिव बाबा को याद करो, वो एक है। वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। जिस समय ये मुरली चली उस समय केवल मेल को ही वर्षा मिलता था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए ये कन्याओं को भी वर्षा देने का अधिकार दिला दिया। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते। वे बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वे कोई दान होता नहीं। दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने देवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। सर्विस एबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, या हमने छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है, चित्र सामने है, देखो ये ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहां से मिला? कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अब ये नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आत्मा ही सारे कर्म करती हूं। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे। जितना खुद को देह समझेंगे तो लौकिक संबंध याद आएंगे। लौकिक संबंधी याद आ रहे हैं तो समझ लो कि मैं अभी तक देह अभिमानी हूं। सब शरीरों में चलती फिरती आत्माएं स्मृति में हैं तो देही अभिमानी। देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा, क्योंकि उसका तो और कोई है ही नहीं। सभी आत्माएं हैं तो परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा ही याद पड़ेगा, उसे देह और देह के संबंधी याद नहीं होंगे। उठते बैठते चलते ये बुद्धि में रखना है कि मैं आत्मा हूं। बाप की मत पर चलना है, बाबा की श्री मत पर चलना है। बस शिव बाबा मत दे रहे हैं तो अपने को आत्मा समझो। मेहनत करनी है, क्योंकि ये इतना सहज नहीं है। सुनना तो सहज है, परंतु धारण करने के लिए मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। बस स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के पक्के मातेली बनो। मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते, अर्थात बाबा की श्री मत पर चलते, क्योंकि याद उसे किया जाता है जिससे प्यार होता है, और प्यार का सबूत होता है कहना मानना। दूसरा कोई याद पड़ता है तो वो सोतेले हो जाते हैं। मतलब किसी और को आपने कहना माना, किसी भी देहधारी का कोई कहना माना, तो आपको बाबा याद नहीं। बाबा की श्रीमत पर जितना कहना मानने की परमिशन दी है, उतना ही कहना औरों का मानना है। जहां परमिशन नहीं है वो नहीं मानना है। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते वो है सोतेल। बहुत हैं जिनको दोनों याद पड़ते रहते, ये बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला, ये बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला। ये भी कुल है, वे भी कुल है, उनसे भी दुख ही मिलता है। बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर, थोड़ी देर के लिए क्षण भंगुर मिलता है। क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं, ये विचार करना है। क्योंकि हम कहां खड़े हैं, तिवाटे पर। तिवाटा कहते हैं तिराहे को, जहां एक रास्ता जा रहा है दुख धाम, एक रास्ता जा रहा है शांति धाम, और एक रास्ता जा रहा है लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ। किधर जाना है? अब बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं? लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यहां तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहां जोड़ें? अपने शांति धाम सुख धाम में जाएं या यहां जाएं दुख धाम में, वास्तव में यहां जाएं दुख धाम की तरफ जाएं ये ख्याल भी नहीं उठना चाहिए, ये ख्याल भी उठना ही नहीं चाहिए। यहां तुम जन्म जन्मांतर रहे, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। यहां तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है ही नहीं, सब आत्माएं और वो भी परमात्म संतान, कोई संबंध नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाएं। सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। बैठने से बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक तरफ क्यों जाएं? ये माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है, और 21 जन्मों का उधर 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। मेरा कहना मानो, क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, कहां जाएं? तो रास्ता तो मिला है, एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, तीन गलियां के बीच टिवाटा होता है। अब हम किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, एक है नरक। नरक में तो सारी दुनिया पड़ी है, इसे कहा जाता है जीवन बंधन। नरक को कहा जाता है जीवन बंधन, जहां हम जीना चाहते हैं जी नहीं सकते, मरना चाहते हैं तो मर नहीं सकते। और इसके अपोजिट है दुख धाम के अपोजिट सुख धाम, जहां हम स्व इच्छा से शरीर धारण करते हैं, स्व इच्छा से शरीर को छोड़ते, वहां दुख की कोई बात नहीं, वहां हम कर्म बंधन मुक्त बनकर जाते हैं। हमारा संसार में किसी भी आत्मा से कोई भी कर्म नहीं। तो जीवन मुक्ति में सब आत्माएं सुख धाम में जाएंगी, और जीवन मुक्ति में जाने के लिए अब भी बनना है जीवन मुक्त, अभी ही उसको अनुभव करेंगे तो सत्युग में जाएंगे। यदि अभी जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया तो आदि में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यहीं से ही हमें संपूर्णता को प्राप्त करके जाना है। जैसे तीन नदियों का संगम है ना, तीन वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम, तिवाटे का मिसाल अच्छा है, अब कहां जाएं? नरक का तो विनाश होना है, यहां दुख बहुत है। अभी हम तिवाटे पर खड़े हैं, अब पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकाल बाबा ने तिवाटे पर खड़ा किया, दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास करके आए हो। तुम जन्म जन्मांतर पास करके आए हो, पहली बार थोड़ा पास कर रहे हो, हर कल्प तुम विजयी बनते आए हो। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है, तो कितना बैठना है? ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा 4999 साल के लिए मुक्ति धाम में रह सकती है। एक साल के लिए तो उसे इस पृथ्वी पर जरूर आना पड़ता है, और कम से कम एक आत्मा एक साल परम धाम में रहती है, 4999 साल के लिए आना ही पड़ता है। तो कृष्ण की आत्मा भी 4999 साल इस पृथ्वी पर पाद बजाती है, एक साल के लिए उसे भी परम धाम में जाना ही होता है। ऐसे नहीं कि हम पाद से छूट जाएं, आई नहीं, पाठ से छूटना नहीं हो सकता, क्योंकि एक साल के लिए तो पाठ बजाने इस पृथ्वी पर आना ही आना है, और ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, कोई रुक नहीं सकता। तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे, एक साथ घर चलेंगे, इतना दुख है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए? क्योंकि जो सुख दुख अब ज्यादा है तो उतना सुख भी देखना चाहिए? ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है, जिनका पार्ट ही थोड़ा है, आए एक दो जन्म के लिए, ये गए, उनको दुख भी कम तो सुख भी कम मिलता है। अब जो आत्मा एक साल के लिए आई, 6 महीने तो उसके गर्भ में ही चले गए, बाकी 6 महीने का जीवन रहा, दुख भी कम तो सुख भी। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो, वो शांति धाम वे सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करो। शांति धाम को याद करने के लिए बाबा कहते जो चाहते हैं मुक्ति उनको बताओ अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, तो मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। जबकि मुक्ति तो सबको मिलेगी, जो परमात्मा को याद नहीं भी करेंगे उनको भी मुक्ति मिलेगी, परंतु ये है आत्म अभिमानी बनेंगे तो सहज रीति से शांति धाम में जा सकेंगे। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने के कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा। वो समझते हैं बस हम मुक्ति में जाएं। उन्हें गलत फहमी है कि हम हमेशा हमेशा के लिए परम धाम जाकर बैठ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें मुक्ति धाम के साथ जीवन मुक्ति धाम भी याद पड़ता है। स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वे चाहते हैं हम मुक्ति में रहें, और आप चाहते हो कि हम स्वर्ग में रहें। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम में नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पार्ट नहीं दिखता। तुम तो सुख धाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो जीवन मुक्त बनने का। अभी हमें जीते जी जीवन मुक्त बनना है। सच्चा योग पसंद आएगा, बाबा की श्रीमत पर चलना पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करते रहो। बाप को याद करो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए, चक्र तो याद करना ही पड़ेगा, बिना चक्र को याद किए जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, क्योंकि उन्हें जाना है मुक्ति धाम में, तो बाप को याद करते रहेंगे। परंतु जिन उनको चक्र को याद करने की जरूरत नहीं, चक्र की याद उन्हें करनी है जिन्हें जीवन मुक्ति में जाना है, ताकि वो हर चक्र पर अपनी बुराइयों का गला काट सके। समझते हैं, जामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले ले, क्योंकि जो आत्मा जिस परसेंटेज पर परम धाम से आई है, वापस घर जाने से पहले उसने उसी परसेंटेज को प्राप्त करके जाना है, ताकि अगले कल्प में वे फिर उसी समय उसी प्रकार से आ सके। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो कि हम सदैव सुखी रहें तो वहां सतयुग में शांति में जाएं, तो शांति भी और सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वे वर्षा लेना है। स्वर्ग सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। एक दो जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर दिन में पैदा हुआ रात को मर गया, वे कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो, तुम लाइट हाउस हो खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो, मुक्ति धाम का भी और जीवन मुक्ति का। चाहे कोई मुक्ति धाम चलो तो चाहे कोई जीवन मुक्ति धाम चलो, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कुमारियां सीढ़ी नहीं चढ़ी हैं, अर्थात पतित नहीं बनी हैं, तो उन्हें पावन बनना सहज है। छोटे पन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। ये बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। चित्र भी हैं, हमको ऐसा बनना है। बाप कहते हैं, इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे, अभी ये खेल पूरा होना है, मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े। अब तुम अब सोजरे में हो, बाप ने आकर नींद से जगाया है, ये बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, जागो, सुख दान के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वो आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं, हिसाब थोड़े निकाल सकते हैं। बड़ी माला छोटी माला सौकार प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वे सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहां बतलाई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं, कितनी धर्म की शाखाएं बढ़ती जाती हैं, वहां निराकारी दुनिया में एकदम खाली हो जाए। फिर विनाश होना चाहिए ना, खाली हो तो विनाश तो होना चाहिए ना। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत, क्या तो कितने खलास होंगे, बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे, जन्म लेंगे नहीं कहा, सतयुग में आकर जन्म लेंगे नहीं कहा, क्या करेंगे, आकर राज्य करेंगे। तो फिर उनका जन्म कहां होगा, उनका जन्म संगम के सतयुग पर होता है, वो अपना शरीर सुरक्षित छोड़कर जाते हैं और वापस आकर शरीर पहनकर खड़े होते हैं और वन 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 नारायण से शुरू होता है, वन 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 श्री कृष्ण से नहीं। तो श्री कृष्ण सतयुग संगम के सतयुग पर जन्म लेते हैं। कितने मनुष्य हैं, अन ही इतना नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही हैं संगम पर, बाप समझाते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक को, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है, श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ, सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे, समझाया जाता है, ये दुनिया खलास हुई पड़ी है, एक्यूरेट टाइम पर ये दुनिया खलास होनी है, एक सेकंड पहले भी नहीं हो सकती, एक सेकंड लेट भी नहीं हो सकती। अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा की याद में ये लाइन बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि हर एक्ट एक्यूरेट टाइम पर होता है, छोटे से छोटा एक्ट, बड़े से बड़ा एक्ट कभी भी एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं हो सकता। ये स्मृति रहे तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री शिव बाबा से, श्री श्री परमात्मा के लिए लगाया जाता है, से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है, मोक्ष से ज्ञान दान करते रहना है। नंबर दो, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप को ही याद में रहना है, सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए, अर्थात बाबा की श्रीमत पर ही विचार करने, किसी दूसरे की मत पर नहीं। वरदान, अपने शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाएं, क्योंकि सबसे पहले विचार आएगा स्वयं का कल्याण करने का और सारे विश्व कल्याण करने का, तब विश्व कल्याणकारी बनेंगे। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपके इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करे। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वे उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति कर आते ही उनको ये खुशी मिलती है। श्लोक त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाला, जो तीनों कालों को जानता है वो कभी भूतकाल में नहीं रहता, भूतकाल का चिंतन नहीं करता, उसको बिंदी लगाना सीख जाता है, क्योंकि भूतकाल एक कैंसर चक है, उसमें अपने आप को बिजी करना माना अपने वर्तमान को नष्ट करना, और भविष्य के लिए भी चिंतन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, वर्तमान में मैं अटेंशन दूं, मेरा हर कर्म परमात्म श्रीमत पर हो तो मेरा वर्तमान अच्छा होगा, तो भूतकाल भी अच्छा था और भविष्य भी ऑटोमेटिक 5000 साल बाद फिर अच्छा ही हो। तो वर्तमान को एंजॉय करेगा, वर्तमान में अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने में व्यस्त रहेगा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।